नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा।
और मैं हूं विनीता। श्रोताओं, इस सप्ताह हम आपसे 1 से 15 अगस्त के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा का पहला आम बजट नित नई उपलब्धियों के साथ युवा, महिला, किसान, MSME केंद्रित रहा, जो 9 सूत्रों के साथ देश के विकास को नई ऊंचाई देगा और बेहतर विकास, उज्जवल भविष्य का नया अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। दूरदृष्टि से पेश किए गए अभूतपूर्व ऐतिहासिक आम बजट ने समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त किया है, जिसका उद्देश्य है अमृत काल में सुदृढ़ भारत की ऐसी तस्वीर को आगे बढ़ाना, जहां निरंतरता के साथ नीतिगत पहल से इंफ्रास्ट्रक्चर को गति, रोजगार के अनगिनत नए अवसर के साथ विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिले। यही हमारे इस अंक की आवरण कथा है, जिस पर कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में आपसे विस्तृत चर्चा हुई। आज हम बात करेंगे पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों की। इस अंक में व्यक्तित्व की कड़ी में प्रफुल्ल चंद्र रे की जयंती, कृतज्ञ राष्ट्र का नमन, 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने के निर्णय पर विशेष सामग्री, प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र दौरा, भारत में विश्व धरोहर समिति की पहली बार मेजबानी इस अंक में शामिल है। साथ ही पत्रिका के इनसाइड कवर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और बैक कवर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा के पूरी समुद्र तट पर प्रकृति का सानिध्य विशेष रूप से शामिल है।
प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और शिक्षक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे आधुनिक भारतीय रासायनिक शोधकर्ताओं में से एक थे। देश में रसायन के क्षेत्र में किया गया उनका उल्लेखनीय कार्य सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने जीवन रक्षक दवाओं के माध्यम से अमूल्य जिंदगियों की रक्षा के लिए प्रयास किया। अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा को समर्पित कर दिया। रसायन शास्त्र की दुनिया में उन्हें बड़े आदर से देखा जाता है। उन्हें भारत के रसायन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। लेकिन वो एक रसायन शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी पहचान रखते हैं। वो एक समाज सेवी के साथ साथ प्रेरणादायी व्यक्तित्व के भी धनी थे, और इस अंक में व्यक्तित्व की श्रेणी में उन्हें स्थान दिया गया है। रसायन शास्त्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल के खुलना जिले में हुआ, जो अब बांग्लादेश में है। शुरुआती पढ़ाई अपने गाँव में करने के बाद वो कलकत्ता आ गए, जहां उन्होंने स्कूली पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान विज्ञान के प्रति गहरी दिलचस्पी जगी। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, जहां उनका रुझान रसायन शास्त्र की ओर बढ़ने लगा। उन्होंने वर्ष 1895 में स्थिर यौगिक मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज की और अमोनियम नाइट्रेट, हाइपोनाइट्रेट और ऑर्गेनिक नाइट्रेट पर भी शोध किया। उन्हें इस पर देश विदेश से बड़ी बधाइयां मिली, लेकिन उनका सपना तो युवाओं के लिए बड़ी इंडस्ट्री बनाने का था। 16 जून 1944 को 82 वर्ष की उम्र में कलकत्ता में उनका निधन हो गया। साल 2024 में देश आचार्य प्रफुल्ल कुमार रे का 163वां जन्म समारोह मना रहा है। उनकी प्रेरणादायी जीवन गाथा आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं।
दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर कायम है। उनके फॉलोवर की संख्या अब 10 करोड़ के पार हो गई है। पिछले 3 वर्षों में ही एक्स पर लगभग 3 करोड़ फॉलोवर बढ़े हैं। फॉलोवर्स के मामले में अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन, दुबई के वर्तमान शासक शेख मोहम्मद और पोप फ्रांसिस के मुकाबले पीएम मोदी काफी आगे हैं। इस पर पीएम मोदी ने लिखा, एक्स पर 10 करोड़, इस जीवंत माध्यम पर आकर खुश हूँ। इस पर चर्चा, बहस, अभिज्ञान, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और अन्य बहुत कुछ का आनंद उठाता हूँ। भविष्य में भी इसी तरह के आकर्षक समय की आशा करता हूँ। समाचार सार में प्रधानमंत्री की इस उपलब्धि के साथ ही अन्य शामिल कुछ समाचार हैं। देश से बाहर मॉरिशस में खुला पहला जन औषधि केंद्र, दुनिया की 5 सबसे बड़ी कोयला खानों में से 2 भारत की, 3 वर्ष में 12,000 से अधिक वस्तुओं का हुआ स्वदेशीकरण और एक पेड़ माँ के नाम अभियान में इंदौर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड।
केंद्र सरकार रोड, रेल, वायु, समुद्र कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पहले से कहीं अधिक खर्च कर रही है, क्योंकि कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 2 शहरों को करीब नहीं लाते, बल्कि पर्यटन, खेती, उद्योग और लोगों के बीच आपसी संबंधों को भी बढ़ाते हैं और इससे रोजगार के नए अवसर बनते हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 3-4 वर्षों में 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल में महाराष्ट्र के पहले दौरे पर ऐसी ही कनेक्टिविटी की करीब 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की मुंबई में आधारशिला रखी और लोकार्पण किया, जो आदर्श बदलाव का प्रतीक है। महाराष्ट्र के पास एक गौरवशाली इतिहास, एक सशक्त वर्तमान और एक समृद्ध भविष्य के सपने हैं। विकसित भारत के निर्माण में महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र के पास इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और फाइनेंस सेक्टर की ताकत है और इसी ताकत ने मुंबई को देश का वित्तीय केंद्र बनाया है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि मेरा लक्ष्य महाराष्ट्र की शक्ति का उपयोग कर इसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति में बदलना है, मुंबई को दुनिया की फिनटेक राजधानी बनाना है। मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र टूरिज्म में भारत का नंबर 1 राज्य बने। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य के साक्षी किले हैं, कोंकण के समुद्र तटों का मनोरम दृश्य है और यहां कॉन्फ्रेंस टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र दौरे की विस्तृत जानकारी भी आप पत्रिका पढ़कर ले सकते हैं।
25 जून की आधी रात और 26 जून की सुबह यानी 1975 में जब देश में लगा आपातकाल, अतीत का ऐसा पन्ना है जिसका इतिहास हमें लोकतंत्र के प्रति समर्पण, संकल्प को मजबूत करने की सीख देता है, ताकि हम जिस भारतीय संस्कृति और विरासत को लेकर आगे बढ़े थे वो सदैव जीवंत रहे। 50 साल पहले हुई इस दिन की घटना ने देश को एहसास कराया था कि लोकतंत्र के प्रति आस्था का महत्व क्या है। भारत के संसदीय इतिहास की इस घटना का स्मरण किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के प्रति पहले से भी अधिक ताकत के साथ समर्पित होने की प्रेरणा देता है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का लिया है निर्णय, ताकि भविष्य में कभी न हो सके लोकतंत्र का लॉकडाउन। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकतंत्र है, लोक शक्ति है, देश का एक एक नागरिक है। जब भी इस पर कोई आंच आई है, इस श्रेष्ठ जनसमूह ने अपनी इसी ताकत से लोकतंत्र को जीकर दिखाया भी है। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे या राजनेताओं तक सीमित नहीं था। जेल के सलाखों तक ही आंदोलन सिमट नहीं गया था, बल्कि जन जन के दिल में एक आक्रोश था।
भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के दिन आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटा गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाला गया और मीडिया की आवाज दबा दी गई। उसी से राष्ट्र को अवगत कराने के लिए भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। ये दिन उन सभी लोगों को नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा झेली। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में सदैव याद रखेगा। अमित शाह की एक्स पर एक पोस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया और कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करना उस समय की याद दिलाएगा जब भारत के संविधान को कुचल दिया गया था। इस निर्णय की विस्तृत जानकारी भी पत्रिका में शामिल है।
भारत की विरासत केवल एक इतिहास नहीं है, एक विज्ञान भी है। भारत इतना प्राचीन है कि यहाँ वर्तमान का हर बिंदु किसी न किसी गौरवशाली अतीत की गाथा कहता है। इस गौरवशाली वैज्ञानिक विरासत पर गर्व करता भारत विकास भी, विरासत भी के विजन पर न सिर्फ अपने देश में आगे बढ़ रहा है, बल्कि विश्व के समक्ष उसे रख भी रहा है। इसी कड़ी में नई दिल्ली में पहली बार विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की शुरुआत हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक विरासत के संरक्षण को भी अपनी जिम्मेदारी मानता है। भारत ने पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है। ये विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय करती है। बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने के प्रस्ताव, मौजूदा 124 विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधियों के उपयोग आदि पर चर्चा होती है। इस आयोजन से जुड़ी सभी जानकारी आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। विकसित भारत के संकल्प के लिए अग्रसर भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान करते हैं।
साथियों, मैं गत 10 वर्ष के अनुभव के आधार पर और विश्व की स्थितियों को बारीकी से जानने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि देश जब आजादी की शताब्दी मनाएगा, भारत की आजादी के जब 100 साल होंगे, वो शताब्दी हम विकसित भारत के रूप में मनाएंगे। हम गरीब देश के रूप में आजाद हुए थे, हम लूट चुके थे, दुनिया में जो कोई भी लूटना चाहता था लूट रहा था, आखिरी मोमेंट तक लूटे गए थे और फिर हमने हमारी यात्रा शुरू की थी। 100 साल के भीतर भीतर सारे अवरोधों को पार करते हुए, संकल्पों को चरितार्थ करते हुए शताब्दी विकसित भारत की मना करके ही रहेंगे। हम रहे न रहे, हमारी पीढ़ियां आने वाली विकसित भारत को गर्व से जिए ये सपने लेकर चलना। आइए हम सब मिलकर आगे बढ़े, अपने भारत को विकसित बनाए और इस संकल्प से सिद्धि पर ले जाने के लिए जीवन का पा अपने पास ईश्वर ने जो भी दिया है उसका उत्तम से उत्तम हम समाज को, देश को फिर से अर्पित करें।
अभी यथा युवानो मत्सथा नो विश्वम जगत अभिवित्वे मनीषा, यानी ये युवा ही हैं जो विश्व में सुख से सुरक्षा तक का संचार करते हैं। आज देश का मिजाज भी युवा है और देश का अंदाज भी युवा है। जो युवा होता है वो पीछे नहीं चलता, वो स्वयं लीड करता है और भारत भी आज यही कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे और उनके सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करे। 12 अगस्त को विश्व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है जिसका विषय है फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो एक बेहतर दुनिया के लिए डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाने में युवाओं की शक्ति को दर्शाता है। भारत सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। भारत की औसत आयु 28 वर्ष की है। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का 65% हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1999 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की शुरुआत की, जिसे पत्रिका के इनसाइड कवर के रूप में शामिल किया गया है।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। अगले सप्ताह भी हम इस अंक पर परिचर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी विनीता को
और मुझे यानी मुनीश शर्मा को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।